नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 21 फरवरी 2020 के साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, सीरिया के पश्चिमोत्तर इलाकों में भारी खून खराबे की आशंका के बीच हिंसा के दुष्चक्र को तोड़ने की पुरजोर अपील। भारत पाकिस्तान की सीमा से होकर गुजरने वाले करतारपुर कॉरिडोर को यूएन प्रमुख ने आशा का गलियारा बताया। चीन में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का संक्रमण, दक्षिण कोरिया और ईरान में भी मामलों की संख्या बढ़ी। जलवायु परिवर्तन और बाजारी शक्तियों से बाल एवं किशोर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है दुष्प्रभाव, और क्या है LGBT समुदाय के सामने चुनौतियां, किस तरह ढूंढे जा रहे हैं उनके समाधान, सुनिएगा एक खास इंटरव्यू। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। साथ ही एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइस में आप हमारा न्यूज़ ऐप डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए UN न्यूज़ रीडर, जिसमें बाईं ओर भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सीरिया के पश्चिमोत्तर इलाकों में भारी हिंसा में फंसे लाखों आम लोगों के हालात पर गहरा क्षोभ जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि दुस्वप्न बन चुकी इस हिंसा को तत्काल रोका जाना होगा। यूएन प्रमुख ने इदलिब प्रांत में लड़ाई तत्काल रोके जाने की अपील करते हुए कहा कि मानवीय तबाही को रोकने और स्थिति को नियंत्रण से बाहर न जाने देने के लिए हिंसा का अंत जरूरी है।
It is crucial to break the vicious circle of violence and suffering. I have repeatedly called for an immediate ceasefire on Idlib to end the humanitarian catastrophe.
इदलिब प्रांत सीरिया के उन अंतिम इलाकों में शामिल है जो विद्रोहियों का गढ़ है, और सीरिया सरकार वहां फिर से नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अभियान चला रही है। पश्चिमोत्तर इलाकों में हिंसा के कारण दिसंबर 2019 से अब तक 9 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें महिलाएं और 5 लाख से ज्यादा बच्चे भी हैं। लड़ाई अब घनी आबादी वाले इलाकों में बढ़ रही है और मानवीय राहत पहुंचाने की संभावनाओं को क्षीण कर रही है। महासचिव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपीलों को अनसुना किया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक कपकपा देने वाली सर्दी में लाखों लोग भारी बमबारी के बीच बदहाल हालात में रहने के लिए मजबूर हैं, और सर्दी से बचने के लिए अपने बचे खुचे कपड़े, फर्नीचर और ऐसे सामान जला रहे हैं जिनसे जहरीला धुआं निकलता है। मानवीय राहत मामलों में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा है कि अगर जल्द संघर्ष विराम नहीं हुआ तो भारी खून खराबा होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने पाकिस्तान में अपनी यात्रा के दौरान बादशाही मस्जिद, सिखों के धार्मिक स्थल गुरुद्वारा दरबार साहिब और करतारपुर कॉरिडोर की यात्रा को एक भावुक लम्हा बताते हुए कहा है कि आस्थाओं के बीच संवाद होते देखना अद्भुत है। अपनी 3 दिवसीय पाकिस्तान यात्रा के दौरान उन्होंने लाहौर में एक किंडरगार्टन स्कूल में छोटे बच्चों के साथ कुछ समय बिताया और वे बच्चों को पोलियो से बचाने वाली वैक्सीन पिलाने के राष्ट्रव्यापी अभियान में भी शामिल हुए। ज्यादा जानकारी के साथ UN हिंदी न्यूज के प्रमुख महबूब खान।
महासचिव ने भारत पाकिस्तान की सीमा से होकर गुजरने वाले करतारपुर कॉरिडोर को आशा का गलियारा करार दिया, जिसके जरिए भारतीय श्रद्धालु अपने पवित्र तीर्थ स्थल के दर्शन कर सकते हैं। करतारपुर में मीडिया से बातचीत में महासचिव ने कहा,
It is wonderful to see interface dialogue. It is wonderful to see in the same shrine today Sikhs.
महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि इस पवित्र स्थल पर सिखों, मुसलमानों, ईसाइयों और शायद हिंदुओं को भी शांतिपूर्ण ढंग से समरसता के साथ उपासना करते देखना अद्भुत अनुभव है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। करतारपुर शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि इस नगर को सिख धर्म के पहले धार्मिक नेता गुरु नानक ने सन 1504 में बसाया था और यहीं उन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की। इस नगर का शाब्दिक अर्थ ईश्वर का स्थल है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने पाकिस्तान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जब हम दुनिया के इतने हिस्सों में धर्म के नाम पर लड़ाई होते देखते हैं तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि धर्म शांति के लिए जोड़ता है, और इसका सर्वश्रेष्ठ प्रतीक ये पवित्र स्थल यानी गुरुद्वारा करतारपुर साहिब है। उन्होंने कहा कि ये एक उदाहरण है जो लोगों को एक दूसरे के साथ गरिमा के साथ बर्ताव करने, आपसी मतभेदों को स्वीकार करने और ये समझने में मदद करता है कि विविधता कोई खतरा नहीं बल्कि आशीष है। यूएन महासचिव ने अपनी 3 दिवसीय पाकिस्तान यात्रा के दौरान जलवायु कार्रवाई का भी आह्वान किया। साथ ही अफगान शरणार्थियों के लिए पाकिस्तानी हमदर्दी और यूएन शांति रक्षा अभियानों में देश के योगदान की सराहना भी की। इससे पहले उन्होंने लाहौर शहर में छोटे बच्चों के एक स्कूल का दौरा किया और पोलियो उन्मूलन के काम में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की जो पोलियो के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। महासचिव ने 3 बच्चों को पोलियो की वैक्सीन भी पिलाई।
चीन में कोरोना वायरस COVID-19 का प्रकोप जारी है और अब तक 75,567 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 2,239 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में चीन में 892 नए मामले सामने आए हैं और 118 मौतें हुई हैं। चीन से बाहर 25 देशों में 1,152 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने बताया कि नए मामलों में कमी इसलिए आई है क्योंकि चीन ने अपने रिपोर्टिंग के तरीके में बदलाव किए हैं। पिछले हफ्ते से चीन लैब में परीक्षण के साथ साथ क्लिनिक में सीटी स्कैन जैसे टेस्ट के जरिए संक्रमण के मामलों का पता लगा रहा था, लेकिन अब फिर से पुराने तरीके को अपनाते हुए संदिग्ध और लैब में परीक्षण किए गए मामलों के बारे में ही बताया जा रहा है। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन के हुबई प्रांत में मामलों में गिरावट के बावजूद शेंगदोंग प्रांत में अब संक्रमण में बढ़ोतरी देखे जाने पर चिंता बरकरार है। चीन के अलावा अन्य देशों में मामलों की संख्या कम है, लेकिन ऐसे संक्रमित मरीजों का पता चल रहा है जिन्होंने चीन की यात्रा नहीं की थी या फिर वे किसी पीड़ित के संपर्क में भी नहीं थे। इसे चिंताजनक बताया गया है। जापान की योकोहामा में डायमंड प्रिंसेस क्रूज जहाज के अलावा अब दक्षिण कोरिया में सबसे बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन सरकार के साथ मिलकर संक्रमण फैलने पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है। ईरान में भी संक्रमण फैल रहा है और पिछले 2 दिनों में 18 मामलों का पता चला है और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़क सुरक्षा पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 3रे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में वर्ष 2030 तक कम से कम 50% की कमी लाने की पुकार लगाई गई है। सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 13 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं और 5 करोड़ से ज्यादा लोग घायल होते हैं। देशों को उनके सकल घरेलू उत्पाद में 3% तक का नुकसान उठाना पड़ता है। पूरी जानकारी के साथ एक बार फिर महबूब खान।
सड़क सुरक्षा विकास और स्वास्थ्य से जुड़ा एक बेहद अहम मुद्दा है। वैश्विक स्तर पर सभी आयु वर्गों में मौतों की संख्या के मामले में सड़क यातायात संबंधी दुर्घटनाओं का स्थान 8वां है, जबकि 5 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों और युवाओं की मौत का ये सबसे बड़ा कारण है। दुनिया भर में सड़कों पर 93% मौतें निम्न और मध्य आय वाले देशों में होती हैं, जबकि उन देशों में दुनिया भर में मौजूद वाहनों की कुल संख्या का केवल 60% हिस्सा ही है। सड़क सुरक्षा पर स्टॉकहोम घोषणा पत्र पारित करते हुए सड़क सुरक्षा के संबंध में टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडा को पूर्ण रूप से लागू करने का संकल्प जाहिर किया गया। घोषणा पत्र में मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में साझेदारी पर जोर दिया गया है और अगले 10 वर्षों में सड़कों पर होने वाली मौतों में कम से कम 50% की कमी का लक्ष्य रखा गया है। सुरक्षित, स्वच्छ, किफायती और ऊर्जा दक्ष परिवहन साधनों को बढ़ावा देने की अहमियत को रेखांकित करते हुए जोखिम भरे इलाकों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निर्धारित किए जाने की बात भी कही गई है।
विश्व का भविष्य बच्चों में मौजूद संभावनाओं के अनुरूप उनके फलने फूलने और स्वास्थ्य कल्याण पर निर्भर है, लेकिन उनका बेहतर और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कोई भी देश पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक आयोग ने बुधवार को अपनी नई रिपोर्ट जारी करते हुए बाल एवं किशोर स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन और बाजारी शक्तियों के दुष्प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया है। 180 देशों का अध्ययन करने वाली ये रिपोर्ट दर्शाती है कि कोई भी देश पर्याप्त रूप से बच्चों के स्वास्थ्य, उनके पर्यावरण और भविष्य की देखभाल नहीं कर पा रहा है। विश्व में हर बच्चे और किशोर के स्वास्थ्य और भविष्य पर पारिस्थितिकीय क्षरण, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता और शोषक बाजारी दबाव के कारण खतरा मंडरा रहा है। बच्चों को शक्कर युक्त पेय पदार्थों, फास्ट फूड, अल्कोहल और तंबाकू की ओर खींचा जा रहा है। अमीर देशों से होने वाला कार्बन उत्सर्जन सभी बच्चों के भविष्य के लिए खतरा बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुई तो उसके बच्चों के स्वास्थ्य पर विनाशकारी नतीजे होंगे, कुपोषण बढ़ेगा और मलेरिया, डेंगू जैसी अन्य बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में कुछ अनुशंसाएं भी जारी की गई हैं, जिनके मुताबिक बाल अधिकार संधि में एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि सोशल मीडिया पर सकारात्मक स्वास्थ्य संदेशों का लाभ उठाया जा सके। सरकारों और समुदायों से अपील की गई है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में निवेश के केंद्र में बच्चों को ही रखा जाना चाहिए। साथ ही वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को रोकने के लिए पेरिस समझौते के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन में कटौती किया जाना जरूरी है। इस वर्ष टिकाऊ विकास लक्ष्यों पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में भारत अपनी दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा पेश करेगा। इसके मद्देनजर भारत में यूएन कार्यालय नीति आयोग के साथ मिलकर सबसे कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिक संगठनों के साथ परामर्श प्रक्रिया में जुटा है। इस सिलसिले में 10 से अधिक जनसंख्या समूहों की पहचान की गई है, जिनमें महिलाएं, बच्चे, एलजीबीटी समुदाय, दलित, आदिवासी सहित अन्य समूह शामिल हैं। हाल ही में दिल्ली में LGBTQIA+ समुदाय के साथ हुए परामर्श में देश भर से कई सामाजिक संगठन एकजुट हुए और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। यूएन एड्स में वरिष्ठ सलाहकार नंदनी कपूर ने हमारी सहयोगी अंशु शर्मा को बताया कि सालों के संघर्ष और पैरवी के बाद इस समुदाय के लिए महत्वपूर्ण प्रगति संभव हुई है, लेकिन फिर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान निकालना बाकी है।
जब हम LGBTQIA+ की बात करते हैं तो ये लोग मार्जिनलाइज्ड में भी मार्जिनलाइज्ड उनको कहा जा सकता है, तो ये जो पूरी डेफिनेशन है LGBTQIA+, इसे क्या समझा जाए?
जो इसका फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स एंड एसेक्सुअल। प्लस इसलिए बोल देते हैं कि और भी हम अगर कोई हो जो छूट गए हों, वो इसमें आदमी और औरत में जो नहीं फिट आते हैं बाइनरी में, वो इसमें इंक्लूडेड हों। ये एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो पिछले सालों में और एक्सपैंड हो गया है। पहले हम LGBT बोलते थे, मगर एक्सपैंड करके उसमें हमने QIA+ और जोड़ा है ताकि जब हम इन लोगों की बात करें ये इंक्लूसिव, हर एक इंसान इसमें इंक्लूड हो और कोई भी पीछे ना छूटे। और वल्नरेबल ग्रुप हैं ये, मार्जिनलाइज ग्रुप है, जिनको बहुत ज़्यादा, चाहे हम स्वास्थ्य की सर्विसेज के बारे में बात करें या एजुकेशन की बात करें, उन सर्विसेज को हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
तो अभी जो VNR कंसल्टेशंस चल रही हैं LGBTQIA+ कम्युनिटी को लेकर, इसमें इनका मकसद क्या है और इनमें क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो उठाए गए?
तो जो VNR कंसल्टेशंस अभी हम लोग ने कराई, वॉलंट्री नेशनल रिव्यू जो नीति आयोग द्वारा इनिशिएट किया गया रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस के साथ, उसमें उन्होंने 13 ग्रुप बनाए कम्युनिटी का इनपुट लाने के लिए VNR में, और उसमें एक ग्रुप था ये वाला ग्रुप LGBTQIA+ ग्रुप। और वो हम लोग को ये लगा कि इस ग्रुप को इसमें लाना बहुत ज़रूरी था और बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये वाले कम्युनिटी पिछड़ जाती है और उनका इनपुट लेना, ये कम्युनिटी ज़्यादातर स्वास्थ्य को लेके जो SDG 3 है, 3 जो हेल्थ का है, उसके साथ जुड़ी रही हैं। मगर जब हमने VNR की बात करी तो हमने पूरे 17 SDGs की बात करी, और इस कम्युनिटी ने ये देखा कि उनको हर एक SDG उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में क्या महत्व रखता है और वो उस SDG को लेके अभी कहाँ पर हैं और कहाँ पे पहुँचने की ज़रूरत है।
तो कुछ उदाहरण देंगे कि किस तरह के, क्या कोई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जो अभी तक जिनके बारे में बात नहीं की गई थी या कुछ नया निकल कर आया?
एक मुद्दा जो निकल के बहुत बार आया वो था आंकड़ों का। ये वाली कम्युनिटी अगर हम देखें तो आंकड़ों में नहीं जुड़ी जाती, डेटा की कमी है, और ये इनकी एक सुझाव भी था कि अगर थर्ड जेंडर, इसमें से हम ट्रांसजेंडर को रिकग्नाइज करते हैं, उनकी पहचान है, तो उनको आंकड़ों में भी जोड़ने की ज़रूरत है। तो ये एक इनकी तरफ से मुद्दा था। 2-3 मुद्दे और आए थे, जैसे एजुकेशन का, पढ़ाई लिखाई का। तो हमें पता है कि स्कूल और कॉलेज में इस कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस इतनी अभी नहीं है, तो उसके लिए सरकार को और काफ़ी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। या स्किल बिल्डिंग, अगर नौकरी की बात करें, इनको नौकरी मिलने में मुश्किल होती है क्योंकि इनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती। और बहुत बार ये जो परेशानी आती हैं, ये भेदभाव की वजह से आती हैं। तो इस भेदभाव को कैसे ख़त्म करा जाए, तो उनकी तरफ से ये मुद्दे थे और ये सुझाव भी उन्होंने बहुत कॉन्क्रीट दिए हैं आगे कि किस तरीके से सरकार के साथ मिलके ये कम्युनिटी काम करने को तैयार है इन मुद्दों को एड्रेस करने के लिए।
तो ये जो ग्रुप है इसको विजिबिलिटी ज़्यादातर कोर्ट्स के थ्रू मिली है, यूएन एड्स ने भी इन्हें प्लेटफॉर्म दिया और काफ़ी काम किया है इस पर, तो क्या अचीवमेंट्स रहे हैं यूएन एड्स के इस बारे में?
यूएन एड्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है, जो एचआईवी देखता है, और यू एन एड्स ने मिलके इस कम्युनिटी के साथ बहुत साल तक काम किया है। बहुत ही संघर्ष रहा है, मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमने बहुत सारे सक्सेसेस भी देखे हैं, और सबसे बड़ा जो सक्सेस था वो 2018 में था जब हमने देखा कि सेक्शन 377 को हटाया गया, और हमें पता है कि ये लड़ाई 10 साल के ऊपर से चल रही, और एचआईवी प्रोग्राम ने इस कम्युनिटी को ये आवाज़ उठाने की जगह दी। उसके बाद जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, ट्रांसजेंडर अलग कम्युनिटी है जिनकी अपनी मांगे हैं, तो जो ट्रांसजेंडर बिल पिछले साल पास हुआ 2019 में राज्यसभा में, वो भी एक बड़ा सक्सेस था, मगर उसमें अभी थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ट्रांसजेंडर्स को लगता है कि उनके लिए वो सही नहीं है या उनको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे यूएनएड्स और नैको मिल के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो सरकार के साथ बात करें कि जब आप लॉज इसको लॉ में कन्वर्ट करें तो जो हमारी मांगे हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखें, ताकि कुछ चीज़ें जो हमको उसमें लगता है कि बाद में परेशानियाँ खड़ी कर सकती हैं जब इम्प्लीमेंट होगा, वो नौबत ना आए।
यूएनएड्स में वरिष्ठ सलाहकार नंदनी कपूर से बात कर रही थी अंशु शर्मा। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही, सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए, नमस्कार।